हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट चरण अरविंद भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद की श्रीमद भागवत महापुराण की समस्त समागत वैष्णव मंडली की श्रीधाम वृंदावन की गोमाता की हरे कृष्णा ऑल ग्लोरियस टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्यम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी पादौ यदीयौ प्रथमौ द्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पञ्चम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्यम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरो पितु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतः स्वरूपम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैर् साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्ति अखिललोकशक्तिधृता ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिललोक मया विस्मृतम् हरे कृष्ण तो आज नवम स्कंध प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 17 है ना तो आज जो प्रसंग है ये लीला कथा है भगवन् किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्ययमहो कष्टं मैवं स्यात् ब्रह्म विक्रिया बोलिए भगवन् किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्ययमहो कष्टं मैवं स्यात् ब्रह्म विक्रिया भगवन् किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्ययमहो कष्टं మైవం స్యాద్ బ్రహ్మ విక్రియా. బోలియా భగవన్ కిమిదం జాతం కర్మ వో బ్రహ్మవాదినాం విపర్యయమహో కష్టం మైవం స్యాద్ బ్రహ్మ విక్రియా. భగవన్ కిమిదం జాతం కర్మ వో బ్రహ్మవాదినాం విపర్యయమహో కష్టం మైవం స్యాద్ బ్రహ్మ విక్రియా. మాతాయ్ భగవన్ కిమిదం జాతం కర్మ వో బ్రహ్మవాదినాం విపర్యయమహో కష్టం నైవం స్యాద్ బ్రహ్మ విక్రియా. భగవన్ హే ప్రభు, కిమిదం యహ క్యా హై, జాతం ఉత్పన్న హువా, కర్మ సకామ్ కర్మ, వహ హమ్ సభీ బ్రహ్మవాదినాం వైదిక మంత్రో కే ఉచ్చారణ మే పటు ఆప్ లోగో కా విపర్యయం విచలన్ అహో ఓహ్ కష్టం కష్టప్రద మా ఏవం స్యాత్ ఇస్ ప్రకార్ నహీ హోనా చాహియే థా. బ్రహ్మ విక్రియా వేద మంత్రో కా యహ విపరీత ప్రభావ్. హే ప్రభు, ఆప్ సభీ వైదిక మంత్రో కే ఉచ్చారణ మే పటు హై తో ఫిర్ వాంఛిత ఫల్ సే విపరీత ఫల్ క్యూ నిక్లా? యహీ మేరే లియే శోక కా విషయ హై. వైదిక మంత్రో కా ఐసా ఉల్టా ప్రభావ్ నహీ హోనా చాహియే థా. అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద కీ. తాత్పర్య, ఇస్ యుగ్ మే యజ్ఞ కర్నా మనా హై క్యూంకి కోయి భీ వ్యక్తి వేద మంత్రో కా ఠీక్ సే ఉచ్చారణ నహీ కర్ సక్తా. యది వైదిక మంత్రో కా ఠీక్ సే ఉచ్చారణ కియా జాయ్ తో జిస్ ఇచ్ఛా సే యజ్ఞ కియా జాతా హై ఉస్కీ పూర్తి అవశ్య హోతీ హై. ఇసిలియే హరే కృష్ణ కా ఉచ్చారణ మహామంత్ర కహలాతా హై జో అన్య సమస్త వైదిక మంత్రో సే మహాన్ హై క్యూంకి హరే కృష్ణ మహామంత్ర కే ఉచ్చారణ మాత్ర సే అనేక లాభ హోతే హై. జైసా కి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు నే బతలాయా హై శిక్షాష్టకం చేతో దర్పణ మార్జనం భవ మహా దావాగ్ని నిర్వాపణం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధూ జీవనం ఆనందాంబుధివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం సర్వాత్మాస్నపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. తో శ్రీల ప్రభుపాద్ నే ఈ శ్లోక్ కే మాధ్యమ్ సే మహామంత్ర కో ప్రతిష్ఠిత్ కర్ దియా. మహామంత్ర కీ జో విశేషతా హై వైదిక మంత్రో సే భీ అధిక్ ఇస్కో ప్రతిపాదిత్ కర్ దియే. శ్రీకృష్ణ సంకీర్తన్ కి శుద్ధ విజయ హో జో హృదయ మే వర్షో సే జమీ ధూల్ కో స్వచ్ఛ కర్తా హై ఔర్ బారంబార్ హోనే వాలే జన్మ మరణ కే బద్ధ జీవన్ కీ అగ్ని కా శమన్ కర్తా హై. యహ సంకీర్తన్ ఆందోళన్ సంపూర్ణ మానవతా హేతు వరదాన్ హై క్యూంకి యహ వరదాన్ రూపీ చంద్రమా కీ కిరణో కో బిఖేర్తా హై. యహ సమస్త దివ్య జ్ఞాన రూపీ విద్యా కా జీవన్ హై. యహ దివ్య ఆనంద్ కే సాగర్ కీ వృద్ధి కర్నే వాలా హై ఔర్ హమే ఉస్ అమృత్ కా పూర్ణ రూప్ సే ఆస్వాదన్ కర్నే మే సమర్థ బనాతా హై జిస్కే లియే హమ్ సభీ సదైవ లాలాయిత రహతే హై. అతేవ హమే జిస్ సర్వశ్రేష్ఠ యజ్ఞ కో సంపన్న కర్నా హై వో హై సంకీర్తన్ యజ్ఞ. యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాయేర్ యజంతి హి సుమేధసః శ్రీమద్ భాగవతం. एकादश पांच बत्तीस, जो लोग बुद्धिमान हैं वे इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करके महानतम यज्ञ का लाभ उठाते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कोई व्यक्ति मिलकर करते हैं तो यह संकीर्तन कहलाता है। ऐसे यज्ञ के प्रभाव से आकाश में बादल आ जाएंगे। यज्ञात भवन्ति पर्जन्यः। दुर्भिक्ष के इन दिनों में मात्र हरे कृष्ण यज्ञ की विधि से लोग वर्षा तथा अन्न के अभाव से छुटकारा पा सकते हैं। निस्संदेह इससे संपूर्ण मानव समाज को शांति मिल सकती है। आजकल संपूर्ण यूरोप तथा अमेरिका में दुर्भिक्ष है और आम प्रजा कष्ट उठा रही है, किंतु यदि लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें, यदि वे अपने पाप कर्म बंद कर दें और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें तो उनकी सभी समस्याएं सरलता से सुलझ जाएंगी। यज्ञ की अन्य विधियों में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि न तो ऐसे पंडित हैं जो मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकें और न ही यज्ञ संपन्न करने की सामग्री प्राप्त कर पाना संभव है। चूंकि मानव समाज दरिद्रता से ग्रस्त है और लोग वैदिक ज्ञान एवं वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की शक्ति से वंचित हैं, अतएव हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र आश्रय है। लोगों को इसका कीर्तन करने की बुद्धिमानी वरतनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजन्ति ही सुमेधसः। सुमेधा संपन्न जो व्यक्ति हैं, जिनके मस्तिष्क कुंद हैं, वे न तो इस कीर्तन को समझ सकते हैं और न ही इसे ग्रहण कर सकते हैं। तो यहां पे प्रसंग है नवम स्कंध का प्रथम अध्याय। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि अष्टम स्कंध में इससे पहले आपने सत्यव्रत का वर्णन किया है मत्स्य अवतार में, फिर आप बता रहे हैं ये वंशावली मन्वंतरों की कथा, तो वहां आपने संक्षिप्त रूप से बताया, अब आप इसको थोड़ा विशद करके बताइए, क्योंकि यहीं से सूर्य वंश से चंद्र वंश में प्रवेश है, दोनों का संबंध स्थली है ये अध्याय। देखिए प्रश्न क्या है, श्री राजोवाच मन्वंतराणि सर्वाणि त्ययोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणन्तं वीर्याण्यनन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। पहला श्लोक है। तो मन्वंतराणि सर्वाणि त्ययोक्तानि, आपने तो सभी मन्वंतरों की कथा बता दिया है, श्रुतानि मे मैंने सुन लिया है, अनंत वीर्य हरिस्तत्र कृतानि च आपने बताया है, लेकिन योसो सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविडेश्वर, द्रविड़ देश के जो राजा जिनका नाम सत्यव्रत है, ज्ञानम यो अतीत कल्पांते लेभे पुरुष सेवया। ये पुरुष हैं भगवान मत्स्य, तो भगवान मत्स्य के सेवा से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था ये तो आपने बताया है, लेकिन वो जो सत्यव्रत है उनके बारे में आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं, ये परीक्षित महाराज जी का आग्रह है। देखिए, सवै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम त्वत्तस्तस्य सुताः प्रोक्ता इक्षाकु प्रमुखा नृपाः। तो जिस वंश में इक्षाकु आदि प्रमुख राजाएं हुए हैं, उन्हीं वंश में जो सत्यव्रत राजा थे विवस्वान के पुत्र, और वो इस मन्वंतर में मनु बने हैं, है ना। हम जब संकल्प करते हैं, कोई भी षोड़श संस्कार हो, घर में अनुष्ठान हो, तो हम संकल्प क्या करते हैं, अष्टाविंशति तमे कलि युगे कलि प्रथम चरणे वैवस्वत मन्वंतरे। ये वैवस्वत मन्वंतर है, यही मनु, श्राद्ध देव मनु कहते हैं इसको। अब देखिए क्या कह रहे हैं, परीक्षित महाराज, तेषां वंशम पृथक ब्राह्मण वंशानुचरितानि च, अब ये दोनों अलग अलग पृथक वंश हैं, ठीक है। वही सत्यव्रत पुनराय श्राद्धदेव वन के आए हैं, ठीक है। तो अब इनकी जो वंशानुचरित हैं, कीर्तयस्व महाभाग नित्यम शुश्रूषताम ही नहा, हम लोग नियमित श्रवण करने वाले हैं, निष्ठापूर्वक बैठे हुए हैं ना वहां पे। अब जितने भी राजा महाराजा हुए हैं और इस वंश में जो कीर्तिमान चरित्र हुए हैं उनको आप बखान करें। चाणक्य कहते हैं कीर्तिर यश सजीवती, जीता कौन है जिनका कोई कीर्ति होता है। हम कोई उदाहरण देते हैं तो किसी विशिष्ट व्यक्ति का ही उदाहरण देते हैं ना, सामान्य व्यक्तियों का उदाहरण हम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति में कीर्ति नहीं होती। अब देखिए सातवें श्लोक में क्या कह रहे हैं, श्रूयताम मानवो वंशः, मानव बहुवचन में प्रयोग है, तो मनु के वंश में जो भी आए हैं उन सभी के वंशों वंशावली तुम सुनो। प्राचुर्येन परंतपः, प्राचुर्येन ना शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि, अगर तुम सुनना चाहते हो मनु के वंशावली तो वर्ष शतैरपि ना शक्यते, सौ साल सालों साल बीत जाएंगे, कई सैकड़ों सालों तक मैं अगर वर्णन करता रहूं तो भी मैं बखान नहीं कर सकता, इतनी बड़ी है वो परंपरा। परावरेषां भूतानां आत्मा यः पुरुषः परः स एवासीत् इदं विश्वं कल्पान्ते कल्पान्ते न्यन्य किंचनः, तो वही जो है भगवान, वही जो सत्यव्रत हैं, वही श्राद्ध देव के रूप में आए हैं। कैसे आए हैं? तो कह रहे तस्य नाभे समभवत् पद्मकोश हिरण्मय, तो प्रलय पयोधि जले जो भगवान शायित थे उनके नाभि से एक कमल निकला, हिरण्मय पद्मकोश सोने का, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, फिर कश्यप, और कश्यप ने दाक्षायनी अदिति से विवाह किया। विवाह करने के बाद उन्हें संतान प्राप्त हुई, विवस्वान नामक पुत्र उत्पन्न हुए, सूर्यदेव। अब यहीं से जो है सूर्य वंश, ततो मनु श्राद्ध देव, उनसे श्राद्ध देव मनु उत्पन्न हुए उसी श्रद्धा से, और श्राद्ध देव की पत्नी थी श्रद्धा, श्रद्धायाम जनयामास दश पुत्रान स आत्मवान। अब उस श्रद्धा से जो पुत्र उत्पन्न हुए इन्हीं की कथा यहां पे वर्णन है। तो बहुत दिनों तक ये अपुत्रक थे, सूर्य वंश में आप देखेंगे ना तो उनकी अधिक पीड़ा जो है वो निसंतानता का है सूर्य वंश में। वहां बहुत इको हो रहा है, उसको थोड़ा कम कर सकते हो? हाँ। तो सूर्य वंश में ये समस्याएं रही हैं। अब ये बहुत दिनों तक सूर्य वंश के कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया, अनुनय विनय किए कि राजा हमेशा चाहेगा, कोई भी चाहता है कि हमारे आगे वंश को चलाने लायक कोई योग्य संतान हो, और राजा तो अवश्य निसंतान नहीं रहना चाहेगा, तो कुलगुरु जब वशिष्ठ जैसे ऋषि हों तो उनसे पूछा, तो उन्होंने मित्रा वरुण का प्रार्थना किया, मित्रा वरुण का यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ, और जो श्रद्धा थी पत्नी वो पयोव्रता थी, वो पयोव्रत कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए। लेकिन क्या हुआ, राजा तो चाहते थे कि पुत्र संतान हो, लेकिन रानी की मन में यह थी कि एक पुत्री हो। विडंबना यही है। अब बहुत कम हो गई आवाज, है आप बोलिए थोड़ा उनको। अप्रजस्य मनोह पूर्वम वशिष्ठो भगवान किल मित्रावरुणयोरिष्टिम प्रजार्थम अकरोत विभुः। अप्रजा, तो ये जो श्राद्ध देव थे ये अप्रजा थे, निसंतान थे, तो मित्रावरुण के जाके वशिष्ठ ऋषि को कहा, तो वशिष्ठ ऋषि ने यह उपदेश दिया कि मित्रावरुण का यज्ञ करो, उनकी उपासना करो, तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ का संकल्प आदि होता है, सारी विधि विधान के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ, वषटकार करके जब आहुति देने का समय हुआ कि मेरी यही कामना है, इस कामना से मैं यज्ञ कर रहा हूं, तो तब श्रद्धा आके कान में आके जो ब्राह्मण था उनको कहा, तत्र श्रद्धा मनोह पत्नी होतारम समय याचत, उनसे याचना की। क्या याचना की? दुहित्रम मर्थम उपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता। वो भी पयोव्रता स्त्री थी, दुग्ध पी के जो है पयोव्रत करके रह रही थी, तो निश्चित ही उनकी वाणी में तो बल है और पतिव्रता भी है। उन्होंने आके बोला कान में होता को कि दुहित्रा यानी पुत्री चाहिए, ये बोल के आप जो है आहुति दें। और उस समय के जो ब्राह्मण या मंत्रविद होते थे वो समर्थ होते थे। जैसे पशु बलि के लिए कई बार चर्चाएं नहीं होती हैं पशु बलि को लेके, कि वेद में तो ऐसा उल्लेख है अश्वमेध गोमेध आदि यज्ञों का, तो उसका यही सार है कि उस समय ब्राह्मणों में इतनी ताकत होती थी, इतनी शुद्धता होती थी कि वो जब पशु को आहुति देते थे तो ये लिखा है कि जरद गव होता था, वो पशु बहुत ही निर्जीव रोगग्रस्त चल नहीं पा रहा है या फिर वृद्धावस्था में है, और मंत्र में आहुति देने के बाद वो दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता था, इतनी क्षमता होती थी मंत्र में। तो जैसे ही वो बोली श्रद्धा कि मुझे पुत्री चाहिए, अब देखिए क्या हुआ, प्रशितोध्वर्युना होता व्यचरत तत्समाहित गृहिते हविषी वाचा वषटकारम गृणन द्विजः। तो अध्वर्यु लेके वशटकार करके उन्होंने आहुति दे दिया कि दुहित्रा हो करके, अब एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा हो गई, लेकिन श्राद्ध देव क्या चाहते थे? पुत्र चाहते थे। होतुस्तद व्यभिचारेण कन्येला नाम सा भवत, कन्या इला नामक एक कन्या उस यज्ञ से प्रकट हुई। ताम विलोक्य मनुः प्राह नाति तुष्ट मना गुरुम, संतुष्ट नहीं थे वो और गुरु के प्रति देखे कि आपने क्या कर दिया, हमारी तो ऐसी अपेक्षा नहीं थी, ऐसे प्रवृद्ध जो गुरु हो और उसमें भी मित्रावरुण का उपासना की गया है और ये भी पयोव्रता हैं, फिर कन्या हो जाए। अब ये जो श्लोक है आज हमारा विचार्य, किमिद भगवन किमिदम जातम कर्म वो ब्रह्मवादी नाम, आप तो ब्रह्मवादी है ना, भगवत वेत्ता हैं, तो आपके आचरण में तो अन्यथा नहीं होना चाहिए था। हमने आपको इसीलिए प्रार्थना किया था कि हमें पुत्र लाभ हो जाए और आपने आशीर्वाद दिया और ये मित्रावरुण यज्ञ आदि सब कुछ पुत्रेष्टि यज्ञ हमने प्रारंभ किया, वो भी पयोव्रता है, लेकिन किमिदम जातम कन्येला सा भवत, इला नाम की एक कन्या प्रकट हो गई, विपर्ययम अहो कष्टम मैव स्याद ब्रह्म विक्रिया। आप जैसे ब्रह्मवादियों का सदाचार संपन्न व्यक्ति अगर कोई गलती करे तो वो समाज में ग्रहण योग्य नहीं होता है। देखिए अगले श्लोक में क्या करें, यूयम ब्रह्म विदो युक्तास तपसा दग्ध किलविशाहा। जो किलविश मन पाप होता है, आप तो दग्ध हो जाता है, जितना पाप है मतलब आप निष्पाप हैं, और युक्तस तपसा तो तपह पूत अंतकरण है वशिष्ठ जैसे ऋषियों के। कुतः संकल्प वैषम्यम अनृतम विबुधेश। एक शब्द देखिए, विबुध, विबुध माने होता है देवता, तो कह रहे कुतः संकल्प वैषम्यम। आपने संकल्प रेजोल्यूशन जो लिया था कि पुत्र होगा, अब संकल्प का वैषम्य कैसे हुआ, और वो भी कैसे अनृतम, जैसे विबुधेशु, विबुधेशु देवताओं में जैसे झूठ बोलने की प्रवणता होती है, ये बात कह रहे हैं। तो यानी देवता झूठ बोलते हैं इसमें, है ना। अब देखिए दशम स्कंध में चले जाइए, जब आठवां गर्भ में वो देवी प्रकट हुई और कंस मारने गया तो वो हवा में उड़ गई, ऊपर चली गई, फिर कुछ आकाशवाणी आदि करने लगी, तो तब कम से क्या कह रहे थे, दैवम अपि अनृतम वक्ति न मर्त्या ही एव केवलम। कम से क्या कह रहे हैं, दूसरे प्रकार से कह रहे हैं कि मर्त्या एव ही केवलम, सिर्फ मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, देवताएं भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था ना अष्टम गर्भ में पुत्र प्रकट होगा, ये तो पुत्री हो गई, तो ये कम से ये बात कह रहे हैं कि दैवम अपि अनृतम वक्ति, देवताएं भी झूठ बोलते हैं, न मर्त्या ही केवलम, मनुष्य ही नहीं, मतलब मनुष्य तो बोलते ही हैं। अब देखिए 20वें श्लोक में कह रहे हैं, एतत् संकल्प वैषम्यम। अब ये जो है वशिष्ठ जैसे तपहपूत अंतकरण वाले जो भी आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, ये सब कुछ देख सकते हैं, जान सकते हैं, इनको कहा जाता है आवर्तनी विद्या। आप पहले क्या थे वो थोड़ा ध्यान करेंगे और बता देंगे कि अच्छा आप ये थे, तो आवर्तनी विद्या कहा जाता है। तो ये इन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, तो कह रहे हैं संकल्प एतत् संकल्प वैषम्यम होतुस्ते व्यभिचारतः। व्यभिचार, व्यभिचार शब्द का कई प्रसंग में प्रयोग होता है, यहां पे व्यभिचार का अर्थ होता है जो नियम पालन करना चाहिए था उसको पालन न करना ही व्यभिचार है। तो श्रद्धा पयोव्रता थी, अब एक संकल्प लेके बैठी हुई थी, तो इतने तप, मित्रा वरुण का यज्ञ, उपासना, इसमें एक बल प्रकट होता है। अब जब वो ब्राह्मण आहुति देने जा रहा था, वशटकार करने जा रहा था, उसी समय कान में आके बोली कि दुहित्रार्थे, कि मुझे दुहित्रा बेटी की प्राप्ति हो। अब ये संकल्प करने से ही व्यभिचार हो गया, और ये वशिष्ठ जी समझ चुके। तो ये जो संकल्प का वैषम्य हुआ ये इसीलिए हुआ, तथापि साधयिष्ये तु सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। मैं अपने बल से, अपने तेज से इसको मैं पुत्र बना दूंगा। अब बताइए, अभी होता है ना जेंडर चेंज, पुरुष को स्त्री बनाया जाता है, स्त्री को पुरुष बनाया जाता, और ये कई लाख करोड़ों वर्ष पूर्व हो चुका है, और हमारे यहां सारी शल्य चिकित्सा जो है वो मंत्रों से होती थी। तो इन्होंने फिर भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करके वो जो इला नामक कन्या प्रकट हुई थी, इला का संस्कृत में अर्थ होता है वाणी। अब देखिए, एवं व्यवसितो राजन भगवान स महायशाः अस्तौ शीद आदि पुरुषम इलायाह पुंस्त्व काम्यया, इला को पुरुष बना दिया। इस प्रसंग में एक महाभारत की कथा मुझे याद आ रही है कि जिसमें युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, और ये स्त्री पुरुषों के मिलन के संबंध में प्रश्न था, तो युधिष्ठिर के मन में प्रश्न आता जाता था और भीष्म से पूछते थे, तो उन्होंने इस संबंधी प्रश्न भीष्म पितामह से किया। भीष्म पितामह ने बोला, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूं, इसका बोध तो मुझे नहीं है, मैं तो पुरुष शरीरधारी हूं ना, तो इस विषय में तुमको ज्ञान वही प्रदान कर सकता है जो दोनों शरीरों के भोक्ता हो, स्त्री शरीर में भी हो पुरुष शरीर में भी हो। तो तब ये सुद्युम्न के बारे में भीष्म देव ने युधिष्ठिर को बताया कि उनसे जाके पूछो, वो बता सकते हैं। तस्मै काम वरम तुष्टो भगवान हरिरीश्वर ददा विलाभवत तेन सुद्युम्न पुरुषर सवह। तो वही ईला अब पुरुष बन गए सुद्युम्न, अत्यंत पराक्रमी राजा। और वो एक महीना पुरुष रहते थे और एक महीना स्त्री। भगवान ने कहा, देखो विधि का जो विधान होता है उसको ओवर पावर नहीं करना चाहिए, तो कुछ भगवत इच्छा होती है, जो सहज किसी को प्राप्त हो जाए वो मान लेना चाहिए कि भगवत इच्छा है, और आप बलपूर्वक उसको अलग करना चाहेंगे तो वो भगवत इच्छा के विरुद्ध होता है। तब कोई राजा एक महीना पुरुष रहे एक महीना स्त्री बन जाए तो वहां के प्रजा खुश होंगे, तो प्रजा जो है सारे नाराज हो गए, ये कैसे राजा हैं, एक महीना तो पुरुष रहते हैं राजवेश में फिर ये स्त्री बन जाती है। अब क्या हुआ, स एकदा महाराज विचरण मृगयाम वने। अब मैंने कहा ना कि दैव इच्छा जो होती है जिसको हम भाग्य कहते हैं, तो भगवान की कुछ इच्छा होती है जो प्रारब्ध कर्म जन्य हमें यह शरीर और जो भी कुछ प्राप्त हुआ है यह प्रारब्ध जन्य है, हमने ही ये कर्म किया था और उसी के कारण हम भोग रहे हैं। इसको किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि आपने गाड़ी को जो है गलत जगह में पार्क कर दिया, अब वहां का सिक्योरिटी आया बोला अरे आपने तो गलत जगह में खड़ी कर दी, वो पोस्टर लगा आपको दिखा, नहीं नहीं मैंने तो देखा नहीं, तो ये एक्सक्यूज कि मैंने नहीं देखा ये चलेगा कि आपको पेनल्टी देना ही पड़ेगा, है ना, आपने गलत जगह में पार्क किया। तो भुंजाना एवात्म कृतम विपाकम, हम जो भी भोग रहे हैं वो हमारे ही कृतकर्म हैं, तो करना हमें क्या है, न स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनु वांग मनोभिर, काय मन और वाक्य से हमें उसी स्थान में स्थित होकर भजन करना पड़ेगा, ये भागवत की शिक्षा है। अब ये मृगया करने एक दिन सुकुमार वन में चले गए, सुमेरु पर्वत में भगवान शिव पार्वती के साथ एक अपना उनका उनकी जगह है जिनका नाम है सुकुमार वन, वो प्रमोद स्थली है। जैसे भगवान का कौन सा है, गिरिराज गोवर्धन, प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते, गिरिराज की जो गुफाएं हैं वहां पे भगवान की प्रमद मदन लीला, जो उच्चतम लीलाएं हैं जो सामान्य मनुष्य के बोध गम्य नहीं है, वो सारी लीलाएं भगवान वहां पे करते हैं। वैसे शिवजी का ये सुकुमार वन है। तो एक बार क्या हुआ था, सुकुमार वन में शिवजी और पार्वती अपना प्रमोद कर रहे थे, लीला विलास कर रहे थे, और वहां पे सामान्यतः कोई नहीं जाता, वो थोड़ा अलूफ अलग जगह पे दूर पे हैं। अब ऐसे में सनक सनातन आदि सारे महर्षियों ने सोचा कि चलो साक्षात शिवजी का दर्शन करके आते हैं, शिवजी बड़े तपःपूत हैं आदि देव हैं, तो चलो हम दर्शन करके आते हैं। तो उन्होंने रात्रि में अपने तेजो बल से प्रकाश प्रकट किया और चले गए उस सुकुमार वन में। और उस समय ये दोनों प्रमोद लीला में व्यस्त थे। दुर्गा जो थी वो विवस्त्रा थी, तो ये देख के वो लज्जिता हो गई, इतने सारे सब आ गए संत एक साथ। तब उन्होंने वो बोली कि हे प्रभु, ये तो अनर्थ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शिवजी ने कहा कि इस वन में अब जो आएंगे वो स्त्री रूप हो जाएंगे, पुरुष के शरीर से जाएंगे तो भी वो स्त्री बनेंगे। अब ये चले गए उसी सुकुमार वन में, फिर क्या हुआ? प्रगृह्य रुचिरम चापम सरांश्च परमाद्भुतान दंशितो दंशितो नो मृगम वीरो जगाम दिशम उत्तराम। उत्तर दिशा में चले गए सुमेरु पर्वत में। सुकुमार वनम मेरोर अधस्तात् प्रविवेशः, सुमेरु के ठीक नीचे है ये पादेश में। जैसे आप तिरुपति बालाजी गए होंगे तो ऊपर को तिरुपति कहते हैं, नीचे को तिरुमला, पहाड़ के नीचे तिरुमला कहते हैं, तो ऐसे ही है सुमेरु पर्वत और उसके नीचे सुकुमार वन। सुकुमार वनम मेरोर अधस्तात् प्रविवेशः, वहां पे प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश कर गए क्या हो गया? तस्मिन् प्रविष्ट एवासो सुद्युम्नः परवीरः अपश्यत् स्त्रियम् आत्मानम्। खुद को देखा, रे मैं तो फिर से स्त्री बन गई। अश्वम च वडवाम नृपः, यहां तक कि जो घोड़े थे वो भी घोड़ी बन गई, सभी बदल गए। तथा तद्गुनाः सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम्, अब उनके जो अनुचर थे, अब राजा युद्ध करने जाएंगे तो सिपाही भी जाएगा ना, उनके बॉडीगार्ड सब सब जाएंगे, वो सभी स्त्री स्त्री में परिवर्तित हो गई। कथमेव गुणो देश केन वा भगवत कृत, किसने बनाया, ऐसा कौन सा देश है जो हम सब परिवर्तित हो गए? प्रश्नमेनम समाचक्ष्व परम कौतूहलम हिनः, ये देखकर सभी के मन में कौतूहल हुआ, जानने की इच्छा हुई। तो फिर वहां गिरीशम भगवान शिव को देखा। फिर एक बार तो वो शरीर उनका परिवर्तन हो चुका था, स्त्री से बड़े मुश्किल से वो पुरुष बने थे, स्त्री पुरुष दोनों का ही आशीर्वाद मिला था, फिर से स्त्री बन गए। फिर ध्यान किसका किया? वशिष्ठ ऋषि का। तो फिर चल के आए वशिष्ठ, सोचा ये एक हैं जो मुझे उद्धार कर सकते हैं। तो वशिष्ठ के पास आए तो वशिष्ठ ने कहा, देखो शिवजी का नाम है आशुतोष, आशुतुष्यति इति, बहुत जल्दी जो प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप जाके उनसे। उन्होंने ही मन ही मन उनको प्रार्थना किया कि हे प्रभु, ये बड़े मुश्किल से जो हैं स्त्री से पुरुष शरीर को प्राप्त हुए थे, फिर से विडंबना हो गई, तो आप इनको जो है फिर से पुरुष बना दीजिए। तो शिवजी ने भी कहा कि अब तो मैं पुरुष नहीं बना सकता, देवी और शिवजी दोनों मिलके, कि मैं इनको एक महीना पुरुष एक महीना स्त्री इस प्रकार आशीर्वाद दे सकता हूं। तो इसी प्रकार ये ईला और सुद्युम्न अपनी जो है वो राज्य चलाते रहे। तो यहां पे जो प्रसंग है कि 17वां श्लोक जो आज का विषय है कि ब्रह्मवेत्ताओं का वाणी जो होता है संकल्प, वो कभी व्यभिचरित नहीं होता है। अब यहां पे एक मन में प्रश्न आ सकता है, कि इला सुद्धुना, हाँ, इला एक बार चली गई थी एक वन में, वहां पे स्नान कर रही थी, वहां पे बुद्ध रहते थे, बुद्ध बड़े तेजस्वी और वो अपने साधना में लीन थे। तो ये सरोवर में चली गई इला, बड़ी सुंदरी थी, और जल को क्षुब्ध करने लगी। तो जल को शुद्ध करने से, सरोवर के जल को क्षुब्ध करने से बुद्ध का ध्यान भग्न हो गया। तो बुद्ध ने देखा, अरे ये कौन सी इतनी सुंदरी महिला है इस सरोवर में, तो उनके मन में भी विवाह का आग्रह था, तो परस्पर प्रेम विनिमय हुआ। होने के बाद आवर्तनी विद्या, जो मैंने पहले बताया, बुद्ध ने आवर्तनी विद्या से देखा कि ये ऐसे कभी पुरुष कभी स्त्री। अच्छा, बुध जो है वो है चंद्रमा का पुत्र, आप जानते हैं चंद्रमा के गुरु हैं बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति। अब चंद्रमा बड़े प्रभावशाली राजा थे, बड़े प्रभावशाली, तो चंद्रमा का इतना प्रभाव हो गया था और अहंकार भी बढ़ गया था, तो उन्होंने अपने गुरु की जो पत्नी है तारा, उनका अपहरण कर लिया था। यह भी बड़ी घटना है, देवी भागवत आदि में इसका वर्णन है। और फिर बृहस्पति संग्राम हुआ दोनों में मिलके, शुक्राचार्य आ गए चंद्रमा के पक्ष में और सारे देव देवताएं आ गए बृहस्पति के पक्ष में। फिर तारा गर्भवती हो गई, उसका बेटा है बुध। तो ये तारा से बहुत बार पूछा गया कि किसका बेटा है, किसका बेटा है, जो भी है देखो तुम देवी हो और देव देवियों का ऐसे अगर गर्भाधान हो जाए तो इसको दोष नहीं माना जाता है, तो देवी मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम बताओ ये किसका बेटा है। तो बोल नहीं रही है अंततोगत्वा। फिर उनके पिताजी के कहने पे उसने बोली, तो चंद्र ने गले लगाए, बेटा मेरा है, बड़ा ही तेजस्वी है, बुध बुध ज्योतिष शास्त्र में एक इतना बड़ा ग्रह है, इतनी ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है जो बुध को समझ सकता है वो पूरे ज्योतिष शास्त्र को समझ सकता है, छोटा सा प्लैनेट है, टाइनी प्लैनेट, लेकिन बुध बुद्धि के कारक हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं। इसीलिए बुध चंद्रमा को सहन नहीं कर पाता, चंद्रमा अपने बेटे से प्रेम करता है, बुध चंद्रमा को पसंद नहीं करता। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया जाता है कि बुध अगर चंद्रमा के घर में बैठ गया तो शत्रु क्षेत्री हो गया, वो शत्रु के घर में, लेकिन चंद्रमा अगर बुध के घर में बैठा है तो अपने बेटे के घर में बैठा है, ये भाव है। तो बृहस्पति ने अभिशाप दिया कि तुम जो एक अवैध संतान हो, तो अभिशाप दिया कि तुम जो है किम पुरुष बन जाओ, यानी हिजड़े बन जाओ। तो इसीलिए नपुंसक बुध को नपुंसक ग्रह कहा जाता है। तो बुध ने देखा मेरी ये दशा है, मैं तो ना पुरुष ना स्त्री, और ये जो है ये एक महीना पुरुष रहता है और एक महीना स्त्री, तो ये मेरे लिए योग्य कन्या है, तो उनसे उन्होंने विवाह किया। फिर पुरुरवा आदि संतान चंद्रवंश वहां से चल पड़ी। यहां पे एक विवेकपूर्ण विषय ये है कि ये जो कथाएं हैं ये द्वादश स्कंध में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि यहां तो भगवद आराधना होनी चाहिए ना श्रीमद भागवतम में, तो ये बुद्ध के साथ इला का विवाह, फिर पुरुष को स्त्री बनाना, स्त्री को पुरुष बनाना, ये सारे विषय क्यों बताया जा रहा है, ये मन में प्रश्न उठता है कि नहीं? कभी कभी कई कई राजा तो हैं, ध्रुव प्रहलाद आदियों की चरित्र तो हम पढ़ते हैं और वो भगवत भक्ति को पोषण भी करते हैं, लेकिन ये जो राजाएं हैं इन राजाओं के बारे में हमें क्यों जानना, ये प्रश्न मन में आ सकता है। तो देखिए, यस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवाद, ये तो हमें सुनना चाहिए। संगीयते अभीक्ष्णम अमंगलघ्न, ये अमंगल को नाश करने वाले हैं। तमेव नित्यम शृणुयाद अभीक्ष्णशम कृष्णे अमलाम भक्ति अभिप्समान, जो कृष्ण में अमला भक्ति चाहते हैं वो भगवान के गुण कथन से ही हो जाएगा, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से ही हो जाएगा। तो ये चंद्र वंश में अमुक राजा थे, शरियाती ययाति पृषद्र नाभाग परुष, इन सब की चरित्र को सुनने का और ऐसी कथा हो जिसमें, तो इन सब का श्रवण करने का उद्देश्य क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कथा इमास्ते कथिता मही असाम, ये जितने भी कथा कही जा रही है, सुद्युम्न कोई सामान्य राजा नहीं था, ना बुद्ध सामान्य थे, ये कोई सामान्य नहीं थे, मही अस शब्दों का प्रयोग किया गया, ये सारे महापुरुष थे, अत्यंत बलवीर्य संपन्न थे। और किस लिए बोला गया है? विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो, विभो माने भगवान में भक्ति होने के लिए दो चीज की आवश्यकताएं हैं, वो आनुषंगिक विषय क्या है? ज्ञान और वैराग्य। अब इन सब राजाओं को, पुरुरवा का चरित्र इन सब का पढ़ेंगे आप, तो ये भी आगे चल के संसार की असारता को समझते हुए इन सब को त्याग के वो संन्यास आश्रम को चले गए। ऐसे बहुत उदाहरण है जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, सोचता है लेकिन वो दिन कभी नहीं आता जब सब त्याग करके वो संन्यास को या वानप्रस्थ को या वैराग्य त्यक्ताश्रम को चला जाए। लेकिन ये राजाएं कर चुके हैं ऐसा, और ऐसे भूरी भूरी उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये हम जैसे भक्तों के ज्ञान और वैराग्य को पोषण करता है इन कथाओं का श्रवण करने से। तो यही बताने के लिए इतने सारे चरित्रों का वर्णन किया। और रही बात, हमारे मन में यह भी प्रश्न आ सकता है कि ये कुछ कुछ लीलाएं जो हैं बड़े विचित्र हैं, जैसे मैंने बुद्ध की लीला बताया ये, या फिर चंद्रमा का, ये तो व्यभिचार है ना। इस विषय में रास पंचाध्यायी के बाद ये प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव महाराज जी से पूछा। वो ये पूछ रहे हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट्वा ईश्वराणाम च साहसम। तो वो ये पूछ रहे हैं कि भगवान जो आए थे वो धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए ही तो अवतरित हुए है ना। अब ये जो रासलीला चल रही है, परदारा अभिमर्शन, दूसरे की पत्नी के साथ रासलीला है ना, और ये सब सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्ति भी इस प्रश्न को उठाते हैं, तो इसका उत्तर सुखदेव जी दे रहे हैं कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट्वा ईश्वराणाम च साहसम। एकमात्र ईश्वर और उनके परिकर ही धर्म का व्यतिक्रम कर सकते हैं, हम आप नहीं। उदाहरण ये दे रहे हैं, शिव जी ने विषपान कर लिया, क्या आप कर लोगे? तो जैसे अभी देखिए ना, वशिष्ठ ने क्या किया, एक स्त्री से पुरुष शरीर बना दिया, लेकिन ये करने के बाद उनको थोड़ा सा भी रंच मात्र अहंकार हुआ क्या, या जताते फिरे कि देखो मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट शल्य चिकित्सक हूं जो मैंने स्त्री को पुरुष बना दिया, आज का विज्ञान तो सोच भी नहीं सकता, और सशरीर परिवर्तित कर दिया, यहां तक कि उसको ये याद भी नहीं रहेगा कि मैं पहले स्त्री थी और जो भी है, और स्त्री शरीर में आते ही उसको पुरुष शरीर का बोध नहीं रहेगा, ऐसे शल्य चिकित्सा। तो ये जो अद्भुत, अच्छा बुध नपुंसक है, अब इनके साथ संतान उत्पन्न हुआ, ये विज्ञान कैसे सोचेगा? तो यही कह रहे हैं कि तेजीय शाम न दोषाय, ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, जो नहीं हो सकता है वो भी कर सकते हैं। और ये जो राजाओं की जीवनी है ये प्रमाण के रूप में है। जैसे हम कहते हैं हमने प्रभुपाद जी को नहीं देखा, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत बड़े भागवत थे, शुद्ध भक्त थे, ये हमें कौन बताते हैं? हाँ, उनके शिष्य। तो प्रमाण रूप में एक तो शास्त्र प्रमाण होता है, इसीलिए भगवान को शास्त्र योनि कहते हैं, भगवान शास्त्र योनित्वात्। और ज्ञान वैराग्य, जैसे कोई भी धन के प्रति सबकी अभिरुचि होती है, ऐसा क्यों होता है? धनी को का धन देख के हमारे मन में धन की प्रवृत्ति जागृत होती है, वैसे ही किसी वैरागी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में वैराग्य का उद्रेक होगा, किसी ज्ञानी को देख के हमारे मन में ज्ञान के प्रति प्रवृत्ति होगी। और ये भागवत में अगर ये चरित्र न होते तो हम बाहर के किसी राजाओं की वीर्य शूरता अगर हम बताएंगे आपको तो हम आप भक्त ग्रहण नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए ये जो भागवत है या फिर विल्लो मंगल ठाकुर ने जो रचना की है, कवि कुलशेखर ने जो भी रचना की है, आज भी उनको हम नियमित रूप से चर्चा करते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो बाहर के बड़े बड़े साहित्यिक कवि आदि हैं उनके जो लिखे गए ग्रंथावली हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में एमए में ही पढ़ाया जाता है ना। कालिदास आदि, माघ, भारवी, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राकृत नायक नायिकाओं के चरित्रों का वर्णन किया है, और ये जितने भी चरित्र हैं ये अप्राकृत हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, जैसे आग होते हैं, वहने सर्वभुजो यथा, अग्नि को सर्वभुक कहा जाता है, आप उसमें हव्य गव्य स्वाहा करके कुछ भी डालो आग उसको जला देती है, लोहे का टुकड़ा डालो तो भी जला देंगे, गोबर डालो तो भी जला देंगे, तो सर्वभुक होता है आग, उसमें कुछ भी डालो। तो वैसे ये जो चरित्र हैं भागवत में वर्णित, ये कोई साधारण चरित्र नहीं है, ये जो असंभव हैं उनको भी करने में समर्थ हैं। ये जब कुछ कीर्ति स्थापित करते हैं तो इनमें अहंकार नहीं होता, और वैसे ही जब ये कुछ हमारे दृष्टि से गलत दिखता है तो इनको कोई दोषाभास भी नहीं होता, क्योंकि ये सभी अप्राकृत चरित्र हैं। चलिए प्रसाद का समय हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समागत वैष्णव मंडली की जय। हरे कृष्ण।